नमस्कार, अभिनंदन आप सभी का। मैं हूं संजय बैनर्जी। कुछ दिनों के विश्राम के बाद क्रिकेट मैदानों की हलचल फिर तेज हो रही है और भी बहुत कुछ है इस पॉडकास्ट में, सुनो दिल से। कोरोना ने सारी दुनिया को आगाह कर दिया है कि जब तक वो है कोई खुलकर जीने की कोशिश न करे। इंग्लैंड में ऋषभ पंत का पॉजिटिव पाया जाना 5 टेस्ट मैचों की लंबी सीरीज के लिए नेगेटिव संकेत है। सिर्फ पंत ही नहीं, उनके साथ थ्रू डाउन विशेषज्ञ दयानंद भी कोरोना की चपेट में हैं। जाहिर है इससे इंडियन कैंप की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। अब दयानंद के साथ संपर्क के चलते रिद्धिमान साहा के साथ 2-3 और प्लेयर्स आइसोलेशन में चले गए हैं। पंत तकरीबन 1 सप्ताह पहले पॉजिटिव पाए गए थे। बताया गया है कि वो इंग्लैंड में होम आइसोलेशन में हैं। भारतीय खिलाड़ियों को बोर्ड ने 20 दिन की लंबी छुट्टी दी और सभी ने उसका भरपूर लुत्फ लिया। सवाल ये उठ सकता है कि दौरे के बीच में इस तरह की छुट्टी देना कितना सही था, लेकिन सच ये भी है कि लगातार बायो बबल में कायम रहना किसी के लिए भी बेहद दुश्वारियों से भरा हो सकता है। ये हालात मानसिक तौर पर भी परेशान करते हैं। लेकिन छुट्टी का मतलब सेलिब्रेशन नहीं था। बेअंदाज होकर कोविड के दौर में छुट्टियां मनाना बेहद खतरनाक हो सकता था, सो हुआ भी। भारत को 4 अगस्त से पहला टेस्ट खेलना है और मंगलवार से प्रैक्टिस मैच। ऐसे में ऋषभ पंत का पॉजिटिव पाया जाना और रिद्धिमान साहा का आइसोलेशन में जाना विकेट के पीछे भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। शुक्र है कि लोकेश राहुल इंग्लैंड में मौजूद हैं और विकेट के पीछे की जिम्मेदारी वो संभाल सकते हैं। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के बाद छुट्टियों में लगातार 20 दिनों का आराम लिया और इसमें खिलाड़ियों ने यूरो कप और विंबलडन देखने के अलावा सैर सपाटे में भी समय बिताया। इंग्लैंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में किसी का पॉजिटिव पाया जाना हैरानी की बात नहीं है। फिर भी जो एहतियात बरतने की जरूरत थी, शायद उसमें कमी रह गई। आपको याद होगा कि इंग्लैंड की पूरी टीम भी इसलिए बदल दी गई क्योंकि टीम के कुछ सदस्य पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इंग्लैंड से सीरीज खेलने वाली श्रीलंका टीम के भी सदस्य पॉजिटिव हुए थे। अब भारतीय टीम के ऋषभ पंत के इसकी गिरफ्त में आने के बाद से चिंताएं बढ़ गई हैं। वैसे भारतीय टीम को अगले महीने टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले अभ्यास का मौका मिल रहा है। डरहम में टीम इंडिया काउंटी चैंपियनशिप एकादश के साथ 20 जुलाई से मैच खेलेगी। दूसरी ओर रविचंद्रन अश्विन ने इस दौरान अपनी गेंदबाजी की छाप छोड़ी है। अश्विन को दौरे के बीच सरे काउंटी के लिए समरसेट के खिलाफ मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने उसे खूब भजाया। सरे की टीम अश्विन पर कितना निर्भर थी वो इस बात से पता चलता है कि उसने भारतीय स्पिनर से पारी की गेंदबाजी की शुरुआत कराई। संयोग से अगस्त 2010 के बाद ये पहला मौका था जब इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप के मैच में किसी स्पिनर ने गेंदबाजी की शुरुआत की हो। अश्विन ने भी निराश नहीं किया और पहली पारी में 1 विकेट लेने के बाद दूसरी पारी में 27 रन देकर 6 विकेट ले लिए। इस कारण विपक्षी टीम सोमरसेट केवल 69 रन पर सिमट गई। उधर भारत की दूसरी टीम श्रीलंका के दौरे पर है। इस टीम को शिखर धवन की अगुवाई में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने हैं। कप्तान धवन ने अभ्यास के दौरान कहा है कि उनका ध्यान सभी को बराबरी के साथ मौका देने पर होगा। कोरोना ने इस सीरीज को भी नहीं बख्शा और मेजबान टीम से जुड़े कुछ लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद श्रीलंका दौरे के कार्यक्रम में भी बदलाव करना पड़ा। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, सो अब टीम के कोच अभ्यास के दौरान पीपीई किट पहनकर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक भी है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वनडे की शुरुआत परसों से होगी। नए प्रोग्राम के मुताबिक बाकी 2 वनडे 20 और 23 जुलाई को खेले जाएंगे और T20 मैच 25, 27 और 29 जुलाई को कोलंबो में ही होंगे। उधर भारतीय महिला टीम का इंग्लैंड दौरा समाप्त हो चुका है। इकलौते टेस्ट मैच में भारतीय महिलाओं ने साहसिक खेल दिखाकर मुकाबले को ड्रॉ पर खत्म किया, लेकिन वनडे और T20 सीरीज में इंग्लैंड ने बाजी मारी। पहला T20 जीतने के बाद दूसरे में इंग्लैंड की टीम 8 रन से हारी, लेकिन तीसरे में फिर इंग्लैंड ने मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया। भारत के लिए शेफाली वर्मा के अलावा मिताली राज, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत सिंह और दीप्ति शर्मा ने प्रभावित किया। अब भारतीय महिला टीम को स्वदेश लौटने के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे का इंतजार होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टीम पहली बार डे नाइट टेस्ट खेलने वाली है। पिछले हफ्ते हमने फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर बात की थी और ये भी बताया था कि किस तरह उन्होंने रणजी ट्रॉफी में शतक देखने के बाद यशपाल शर्मा को भारतीय टीम में शामिल करने की वकालत BCCI अधिकारियों से की थी। लेकिन काल के क्रूर चक्र को देखिए, दिलीप जी के जाते ही यशपाल ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। यशपाल शर्मा ने 1983 के विश्व कप में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने क्रिकेट में कई तरह के किरदार अदा किए। इस हफ्ते यूरो कप और कोपा अमेरिका पर दुनिया की निगाहें थीं। यूरो कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शानदार प्रदर्शन के बाद भी पुर्तगाल की टीम प्री क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई। फिर भी रोनाल्डो 5 गोल कर सबसे आगे रहे। वैसे उनको यूरो एकादश की टीम में जगह नहीं दी गई। इटली ने फाइनल में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराकर दूसरी बार खिताब जीता, जबकि इंग्लैंड पहली बार यूरो कप जीतने से चूक गया। उधर रियो डी जेनेरो में अर्जेंटीना ने फाइनल में मेजबान और गत विजेता ब्राजील को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका कप 15वीं बार जीत लिया। इस जीत से अर्जेंटीना के सर्वकालिक महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी को सबसे राहत मिली, क्योंकि देश के लिए पहली बार उन्होंने किसी बड़ी प्रतियोगिता का खिताब जीता। ब्राजील के नेमार के लिए यह हार निराशाजनक रही, क्योंकि वो अपने लिए पहली बार कोपा कप नहीं जीत पाए। दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला ओलंपिक गेम्स अगले हफ्ते शुरू हो रहे हैं। इस बीच दुनिया भर से प्लेयर्स टोक्यो पहुंचने लगे हैं। टोक्यो में कोरोना आपातकाल लगा है और अब घोषणा कर दी गई है कि अधिकतर मुकाबले बिना दर्शकों के ही होंगे। भारत अब तक के सबसे बड़े दल के साथ ओलंपिक में हिस्सा लेगा। भारत के कुछ एथलीट्स विदेश से सीधे टोक्यो पहुंच चुके हैं, जबकि भारत से पहला जत्था कल रवाना होगा। कोरोना काल में 1 साल देर से शुरू हो रहे ओलंपिक खेलों में भारतीय दल से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन बड़े मुकाबले का बेहतर टेम्परामेंट ही उन्हें मेडल के नजदीक ले जा सकेगा। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। जुड़े रहिए खेल दुनिया से और चलते रहिए न्यूज 18 के साथ। संजय बैनर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।